पार रेडियो की प्रस्तुति
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी
बिलासपुरियंस की आवाज
गजर ने किया है इशारा।
सभी श्रोता साथी स्वीकार करें अपनी अलंकृता का नमस्कार। अलंकृता हाजिर है आपके साथ लेकर कार्यक्रम गजर। इस बार गजर में कुछ अनोखा है मेरे पास। हर बार हम गजर में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन इस बार हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। इस बार मैं लेकर आई हूँ एक नाटक जो कि हम आपको सुनाएंगे और आप देखेंगे। जी हाँ, देखेंगे इसलिए क्योंकि आप बस नाटक को सुनते वक्त अपनी आंखें बंद रखिएगा और शायद आप नाटक अपने सामने हो रहा है ऐसा महसूस कर पाएं। नाटक तो हम देखेंगे, पर चलिए उससे पहले बात करते हैं इस नाटक को सिखाने वाली मैम से और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये वर्कशॉप कैसे करवाई। उनसे बात करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नाटक जो हम अभी सुनने वाले हैं ये नाटक अग्रज नाट्य दल द्वारा सिखाया गया है। अग्रज नाट्य दल क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। ये बिलासपुर की एक लगभग 30 साल पुरानी संस्था है जो कि थिएटर करवाती है और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने लगभग 4 वर्कशॉप करवाई है जिसमें से 3 बड़ों की थी और 1 बच्चों की। और आज जो हम नाटक देखने वाले हैं वो है बच्चों का नाटक जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। पर चलिए नाटक सुनने से पहले बातचीत करते हैं अर्चना टोप्पो जी से। आइए सबसे पहले इनसे हम पूरी तरीके से परिचित होते हैं।
नमस्ते, मेरा नाम अर्चना टुप्पो है। पेशे से मैं एक शिक्षिका हूँ। यहाँ 20 जून से अग्रज नाट्य दल के द्वारा महाराष्ट्र मंडल के सहयोग से वर्कशॉप बच्चों के लिए शुरू हुई है जिसमें मेरे साथ में आकाश गुप्ते, उनके साथ मैं बच्चों का वर्कशॉप ले रही हूँ। मेरा अनुभव बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहा है। छोटे बच्चों के साथ में काम करने का मेरा ये पहला अनुभव रहा है। बड़े बच्चों के साथ तो कई बार काम किया है, छोटे बच्चों के साथ में एक अलग ही एनर्जी, एक अलग तरह की ऊर्जा के साथ काम करना पड़ता है जिसमें बहुत मज़ा आया। और अभी हम 2 नाटकों को करा रहे हैं इनसे, एक स्वप्नलोक है और दूसरा अंधेर नगरी है।
अच्छा, तो इस बारे में तो मैं आपसे बात करूँगी, पर इससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका जुड़ाव नाटक से कब से है।
बचपन से स्कूल वगैरह में जैसा समझ में आता था वैसा करते थे हम लोग। हमारे टाइम में तो इतनी फैसिलिटीज़ रहती नहीं थी वर्कशॉप वगैरह कहीं। जब से बिलासपुर आए हैं तब से अग्रज नाट्य दल के बारे में पता चला। बीएड कर रही थी तब श्री योगेश पांडे जी सर थे, वो हम लोगों को नाटक मतलब ड्रामा इन एजुकेशन एक उसमें पार्ट होता है बीएड में, वो कराने के लिए वो आए हुए थे। तब पहली बार उनके साथ में नाटक के बारे में जो बारीकियाँ सीखने को मिली और उन्होंने मौका दिया हम लोगों को असल में, तो जुड़ने का मौका दिया और इनके साथ बहुत अच्छा लगा। अग्रज जिस तरीके से इनका नाम है अग्रज, ये सभी का स्वागत करता है, जो भी मंच से जुड़ा है या नाटक वगैरह करना चाहता है उन सबका स्वागत करता है। सालों से, पिछले 30 वर्ष से भी अधिक का समय हो रहा है इनका और सालों से लोग जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा है जो लगातार परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाते लेकिन हमेशा किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहते हैं, अपना योगदान देते रहते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से उसमें जुड़े रहते हैं।
बिल्कुल, तो मैं ये देख भी पा रही हूँ यहाँ पर कि अग्रज केवल एक नाट्य दल नहीं है बल्कि आप लोगों का परिवार है। ये देख के महसूस हो रहा है कि आप लोग अपने सारे काम छोड़ के अग्रज के लिए आते हैं, समय देते हैं।
और इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाता है तो ये कभी साथ नहीं छोड़ते, आपको बस एक बार कहना होता है। केवल हम मंच पे ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे जगहों पे हम साथ रहते हैं। साल दर साल ये चीज़ें और गहरी होते जा रही हैं एक दूसरे के साथ में, तो बहुत अच्छा अनुभव है हमारा इनके साथ में।
तो अभी आपने बताया कि इन बच्चों द्वारा आप लोग 2 नाटकों का मंचन करवा रहे हैं, तो मुख्य रूप से आप किस नाटक पर अभी ध्यान दे रहे हैं?
दोनों नाटकों में दोनों का ही है, ज़्यादातर आकाश गुप्ते, उनका बहुत अनुभव रहा है। मेरा तो कुछ 10-12 साल से ही इनके साथ में है लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है तो उन्होंने बहुत सारा चीज़ कराया हुआ है। मैं उनको ज़्यादातर असिस्ट कर रही हूँ, इसमें जो छोटे छोटे म्यूजिक पार्ट्स हैं और डांस वगैरह ऐड किया गया है, उन सब में मेरा सहयोग है उनके साथ में।
तो अग्रज से आप मतलब लगभग 11-12 साल से जुड़ी हुई
है? हाँ, ज़्यादा भी हो रहा होगा। अब ऐसा है कि समय मायने नहीं रखता आप कितने सालों से हैं, लेकिन रिश्ते जो हैं वो बहुत गहरे हैं एक दूसरे के साथ।
बिल्कुल। और अभी जो बच्चों का वर्कशॉप चल रहा है, इसमें आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ परेशानियाँ हुई बच्चों के साथ?
परेशानियाँ तो कुछ नहीं, थोड़ा मौसम का है, बाकी बच्चे ऐसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
इतने छोटे बच्चे हैं, उनको क्या लगता है आपको नाटक सिखाने की ज़रूरत है और क्यों है?
पहली बात तो इनकी खुद की इच्छा, वो खुद चाहते हैं वो नाटक करना। और कई बच्चे जो हैं वो पहले भी कई वर्कशॉप कर चुके हैं।
अच्छा।
उनके लगता भी है उनका इतना सब, उनके पास खुद अनुभव, उनका खुद का अनुभव है, हमसे कुछ ले रहे हैं और उसके साथ में अभी जो सीख रहे हैं वो आप देखने को मिलेगा।
तो क्या नाटक जो है वो बच्चों का और भी विकास में काम आता है?
हाँ, नाटक का जो है हमको हर जगह काम आता है। नाटक हम सोचते हैं कि सिर्फ मंच में जाकर के परफॉर्म करने की बात है, लेकिन जब हम नाटक सीखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सीखते हैं हम डिसिप्लिन सीखते हैं, और डिसिप्लिन में रहना, मैनेजमेंट सीखते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हैं, लोगों के साथ बात कैसे करना है, आपका व्यवहार सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उसको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उतार लेते हैं। आपका खुद का व्यक्तित्व वैसा हो जाता है कि आप सब चीज़ों को वैसा करने लगते हैं। और हम लोग जैसे रोज़ के ऐसे तक गुस्सा आता है किसी को बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आदत होती है, आप उन सब चीज़ों को आप देखोगे जब आप मंच से जुड़ जाते हो तो धीरे धीरे आप एक तरीके से परिपक्वता की ओर चले जाते हो, है ना, मैच्योरिटी पाने लगते हो हर एक चीज़ में। मैं सारे सबको देखी हूँ, शुरू में जब आते हैं तो हम कुछ अलग होते हैं और जैसे मंच का अनुभव बढ़ता जाता है, साथ का अनुभव बढ़ता जाता है, उन सब में एक अलग आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा।
तो अभी इतने दिन की वर्कशॉप में कुछ चैलेंजेस आए होंगे और भी, मतलब छोटे बच्चे हैं तो इनको सिखाना सरल रहा या थोड़ा मुश्किल हुई बड़ों के हिसाब से?
मुश्किल कह सकते हैं कि समय कम था, बाकी बच्चे अपने तरीके से 100% अपना पूरा वो लगाए हैं। मौसम के साथ भी बहुत ज़्यादा इस बार गर्मी रही है, उसमें भी बच्चे अपना सारा चीज़ करके आए हैं, जो हम लोग जितना भी उनको बताते थे, होमवर्क देते थे, बकायदा घर पे जाते थे उसको करके आते थे। और जैसे ये होता है कि हम जो चीज़ें सिर्फ सिखाते नहीं हैं, वो बच्चे खुद के अनुभव से उस चीज़ को कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि ये करना है, उसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, वो बच्चे वो भी करके दिखाते हैं।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। अंत में आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे?
मेरे साइड से ये मैसेज रहेगा कि अगर आपने कभी कुछ भी, जैसा आप मंच वगैरह में परफॉर्म करना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, अलग किसी भी प्रकार का आपका रुचि रहा है, तो आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो गई हो, आप वापस से उससे जुड़िए, क्योंकि आपका अनुभव उसके साथ में बहुत अच्छा रहेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं तो आपको एक नयापन, नया ताजगी का एहसास होगा।
तो पता चला आप लोगों को कि नाटक सिर्फ नाटक नहीं है बल्कि एक प्यार है, और नाटक करते करते अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करने का एक मौका मिलता है। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं नाटक।
यह नगर तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे।
जी महाराज, नगर तो नारायण की कृपा से बड़ा ही सुंदर है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होवे।
बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा, और बच्चा नारायण दास, तू पूरब की ओर से जाएगा, देख जो कुछ भिक्षा मिले।
जी गुरुजी, जो आज्ञा गुरुजी।
जो आज्ञा गुरुजी।
गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, आप कुछ चिंता मत कीजिए। वैसे भी यहाँ के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं।
बच्चा बहुत लोभ मत कर, लोभ पाप का मूल है।
जी गुरुजी।
ले आटा, ले दाल, ले नमक, ले घी, ले सब टके से ले, चीनी ले, मसाला ले, चावल ले, सब टके से ले,
ले चना, ले चना, गर्मा गर्म मसालेदार चना, ले चना, सब टके से, सब टके से।
ले जलेबी, ले जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, समोसे सब गर्मा गर्म, सब टके शेर, मिठाइयाँ, लड्डू, गुलाब जामुन, सब टके शेर, सब टके शेर।
जात ले जात, टके शेर जात, एक टके के वास्ते धर्म प्रतिष्ठा दोनों बेचे, लुटाया दिया अनमोल माल, ले टके शेर।
ले धनिया, मेथी, पालक, चौराई, बथुआ, सब टके शेर, सब टके शेर।
ले जलेबी, ले जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, समोसे सब गर्मा गर्म, सब टके शेर, लड्डू, गुलाब जामुन।
गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल,
अरे कितना सुंदर बाजार है ये तो, वाह 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 वाह, बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों भाई बनिए, आटा कितने से?
टके सेर,
टके सेर। और ये दाल चावल?
सब टके सेर बाबा,
सब टके सेर। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर नगरी है ये तो। क्यों भाई भाजी कितने से?
टके सेर।
सच में सब भाजी टके से?
हाँ बाबा जी, सब टके से।
अच्छा अभी आता हूँ मैं। क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने से?
टके से,
टके से। सचमुच? हाँ बाबा। क्यों बच्चा तुम उससे मस्खरी तो नहीं कर रहा ना?
क्या झूठ बोलूंगा बाबा जी, इस नगरी की चाल ही ऐसी है।
क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है?
बाबा जी अंधे नगरी।
अच्छा अंधे नगरी, और राजा का क्या नाम है?
चौपट राजा।
चौपट राजा, वाह 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 वाह। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से भाजा। बाबा जी कुछ लेना देना है तो लो।
हाँ बच्चा, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, तू 3.5 शेर मिठाई दे दे।
जी बाबा। खुश हो गए ना बाबा जी?
हाँ हाँ बच्चा,
तो गाओ फिर।
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके
से भाजा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से भाजा। प्रणाम गुरुजी।
बच्चा गोवर्धन दास, क्या क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है।
बाबा जी 3.5 शेर मिठाई लाया हूँ।
देखूं बच्चा?
लीजिए बाबा जी।
वाह वाह बच्चा, इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाया है?
बाबा जी 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से मैंने इतनी सारी मिठाई मोल ली। आपको पता है यहाँ पर सारी चीजें टके शेर में बिकती हैं।
बच्चा नारायण दास ने मुझे बताया था कि यहाँ सब चीज टके शेर में मिलती है, पर मैंने इसकी बात पे विश्वास नहीं किया था। यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा है?
बाबा जी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा।
तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। चलो यहाँ से, यहाँ 1000 मन मिठाई भी मुफ्त में मिले तब भी कोई काम की नहीं, मैं तो यहाँ एक क्षण नहीं रहूंगा।
पर गुरुजी, गुरुजी ऐसा तो इस संसार में कोई देश नहीं जहाँ 2 पैसे पास में रहने से ही मजे से पेट भर जाता हो, दूसरे जगह 3 बार मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा गुरुजी।
देख बच्चा, पीछे पछताएगा।
आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा गुरुजी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए।
बच्चा मैं तो यहाँ एक क्षण नहीं रहूंगा, मेरी बात मान नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर यह कहते जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो मेरा स्मरण कर लेना।
प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करता रहूंगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी के राजा श्रीमान चौपट राजा दरबार में लाए जा रहे हैं।
पान खाइए महाराज।
क्या कहा? सुपना खाई है महाराज? नहीं 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 महाराज, ये कहता है कि पान खाइए। अच्छा, दुष्ट लुच्चे पाजी हमको डरा दिया, मंत्री इसको 100 कौड़े लगे। पर महाराज इसका क्या दोष है, ना तो तमोली पान लगा कर देता ना ये पुकारता। अच्छा, तमोली को 200 कौड़े लगे। पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़ी डरे हैं, आप तो सुपनह के नाम से डरे हैं, सुपनह को सजा हो। फिर वही नाम? मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री तुमको बेर बेर सौद बुलाना चाहते हैं।
आई एम सॉरी महाराज।
इट्स ओके, नौकर नौकर सोमरस।
सोमरस पेश है महाराज।
कितना बकवास है ये, कहाँ से लाए हो? मंत्री इसको 400 कोड़े लगे।
जी महाराज।
ये अच्छा है,
होममेड है महाराज, होममेड।
बहुत बढ़िया, हम प्रसन्न हुए। मंत्री इसको मोती की माला दो।
पर महाराज ये तो मेरी है।
तो क्या हुआ, तोहफे के तौर पर कुछ तो मिलेगा ना, दे दो।
अच्छा जी महाराज, ये ले।
धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमारा इंसाफ हो।
चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसे यम के यहाँ भी ना हुआ। बोलो क्या हुआ?
महाराज कल्लू बन्या की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई हो महाराज, इंसाफ हो।
अच्छा, गोरे बन्या की दीवार को अभी पकड़ लाओ।
पर महाराज दीवार पकड़कर नहीं लाई जा सकती है।
अच्छा, तो उसका भाई बेटा आशना जो हो उसको पकड़ लाओ।
पर महाराज दीवार ईटे चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता।
अच्छा, गोरे बनिया को पकड़ लाओ।
गोरा बनिया हाजिर है महाराज।
क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई?
बरकी नहीं महाराज, बकरी। मह मह बकरी।
हाँ हाँ, बरकी बकरी जो भी हो, क्यों दबकर मर गई बोल, नहीं तो अभी फांसी की सजा सुनाता हूँ।
नहीं नहीं महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई।
अच्छा, इस गोरे बनिए को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ।
जो आ गया महाराज। कारीगर हाजिर है महाराज।
क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई?
महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी।
अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं निकालो, चूने वाले को पकड़ लाओ।
जो आ गया महाराज। चूने वाला हाजिर है महाराज।
क्यों बे खैर सपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी किस तरह मर गई?
महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इससे चूना कमजोर हो गया।
अच्छा, इस चूने वाले को निकालो, भिश्ती को पकड़ो।
जो आ गया महाराज। भिश्ती हाजिर है महाराज।
क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती इतना पानी क्यों दिया कि बकरी मर गई?
महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मसक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया।
अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो।
जो आ गया महाराज।
कसाई हाजिर है महाराज।
महाराज महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, गडरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ भेजी कि उसकी मशक बड़ी बन गई।
अच्छा, कसाई को निकालो, गड़ेड़े को लाओ। जो आज्ञा महाराज। गड़ेड़िया हाजिर है महाराज।
चुभे ऊख पौड़े के गड़ेड़िये, इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि उसकी बकरी मर गई?
महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं महाराज।
अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी तुरंत पकड़ लाओ। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल हाजिर है महाराज।
कबे कोतवाल, तेने सवारी ऐसे धूम से क्यों निकाली कि गड़ेड़े ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिरकर गोरा बनिया दब गया?
महाराज महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था।
ये तो बड़ा गजब हुआ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी सी बात पे ये बेवकूफ राजा पूरे नगर को फांसी दे दे। ये नहीं, तुमने ऐसे घूम से सवारी क्यों निकाला?
हाँ हाँ, या नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी?
महाराज महाराज।
कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दो।
जो आ गया महाराज।
नहीं महाराज, मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए।
ले जाओ, दरबार बर्खास्त। मंत्री
जी। महाराज जी 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 जी।
आ सेवक। आबे सेवक, कहाँ मर गया? आ
जी महाराज।
अंधेरे नगरी चौपट राजा टके से भाजी, टके से भाजा। अंधेरे नगरी चौपट राजा टके से भाजी, टके से खाजा।
गुरुजी ने हमको बेवजह यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपने को क्या, अपने को तो रोज मिठाई छापना है और मजे से राम भजन करना है बस। नमो नारायण।
चल बे चल, बहुत मिठाई खा के मुटाया है।
हैं?
चलो बाबा जी, नमो नारायण कीजिए।
अरे ये आफत कहाँ से आ गई? अरे मैंने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो तुम लोग?
आपने बिगाड़ा है या नहीं, इससे हमें क्या मतलब? अब चलो फांसी लटको।
फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी जो मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी?
आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी।
मोटे होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे बच्चा, हंसी फकीरों से नहीं करनी होती।
जब फांसी लटक लीजिएगा तब समझ आ जाएगा हंसी है या सच्चाई। अब चलो।
अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, अरे मुझे छोड़ दो। भगवान के यहाँ तुम लोग क्या जवाब दोगे?
भगवान के यहाँ जवाब राजा देगा, हमें उससे क्या, हमें तो हुक्म हुआ है। अब चलो।
अरे बाबा, फिर भी बात क्या है जिसके लिए मुझे फांसी चढ़ाते हो?
वो क्या हुआ ना कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ और कोतवाल साहब है दुबले, जब हम उन्हें फांसी चढ़ाने ले गए तो फंदा ही बड़ा पड़ गया। जब हमने राजा से अर्ज किया तो हुक्म हुआ कि कोई मोटा आदमी पकड़ के उसको फांसी दे दो। अब बकरी मारने के जुल्म में किसी ना किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी ना, इसलिए तुमको ले जाते हैं।
तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ गरीब को फांसी चढ़ाते हो?
इसमें दो बात है, एक तो यह कि राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, और दूसरा यह है कि किसी और को पकड़ते तो ना जाने क्या बात बनावे कि हमारी सिर न गहराए। और वैसे भी इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी होगी।
दुहाई है परमेश्वर की, हाय गुरुजी का कहना मैंने नहीं माना, उसी का फल है ये। अरे इस नगरी में बड़ा अंधेर है, गुरुजी कहाँ हो? बचाओ मुझे गुरुजी, बचाओ मुझे, बचाओ गुरुजी, बचाओ मुझे गुरुजी, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे कुछ तो धर्म विचारो तुम लोग, भला मुझे फांसी चढ़ाकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा?
अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला टाला जा सकता है कहीं? ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेवजह शोध क्यों करता है?
गुरुजी का कहना मैंने नहीं माना, उसी का फल है ये। अरे इस नगरी का तो नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट। अब बचने की कौन सी आशा रह गई है भला? गुरुजी कहाँ हो, बचाओ मुझे गुरुजी, बचाओ बचाओ मुझे गुरुजी।
अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा?
गुरुजी, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, सो इसके लिए इन लोग मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ, बचाओ गुरुजी।
कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थन। सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उद्देश्य देने दो। अगर मेरी बात ना मानोगे तुम्हारा भला ना होगा।
नहीं महाराज, हम पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए।
अच्छा, तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। फांसी चढ़ाओ हमको, फांसी चढ़ाओ।
नहीं बच्चा, हमें चढ़ने दे।
नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे।
नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया तब भी नहीं मानता। हम बूढ़े हैं, हमको जाने दे।
स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या गुरुजी, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या। हम फांसी चढ़ेंगे, हमको फांसी चढ़ाओ।
हम चढ़ेंगे,
हम चढ़ेंगे।
ठहरो सेवक, यह क्या गोलमाल है?
महाराज कुछ समझ नहीं आता। चेला बोलता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु बोलता है मैं फांसी पढ़ूंगा, यह क्या गोलमाल है हमें भी समझ नहीं आता।
बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं?
राजा यह समय ऐसा है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा।
तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे।
अरे हम फांसी चढ़ेंगे, हमको लटकाओ।
हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी।
चुप रहो सब लोग, राजा के होते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी।
जो आज्ञा महाराज।
जहाँ ना धर्म ना बुद्धि ना ही नीति सुजन समाज, ते ही ऐसा अनुपी ही नसे चौपट राज।
आप सभी को नाटक कैसा लगा? मैं तो एकदम खुश हो गई हूँ ये नाटक सुन के। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। वैसे मैं सिर्फ नाटक सुनवाने नहीं बल्कि आप लोगों को आमंत्रण देने भी आई थी। आमंत्रण किस चीज़ का? यदि आप और नाटक देखना चाहें तो सिम्स के ऑडिटोरियम में चल रहा है अग्रज का 3 दिवसीय कार्यक्रम, जिसके अभी 2 दिन बाकी है, यानी कि आज और कल शाम को 6:30 बजे से। तो आप भी नाटक देखने जरूर आइएगा। अब दीजिए अलंकृता को इजाजत। नमस्कार, नाटक देखने जरूर आइएगा।
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज,
ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो।